5130012 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या kanimsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
Grill in the Heart, Mrs. Saga में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। Grill in the Heart, खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
Grill and Chick, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. आपने पहुंचना 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive, Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500, Grill and Chick.
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम, 4163022522, 302-2522।
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब आरएस वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीन,
रेड लाइट या फिर सीट बेल्ट,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट व्हाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
आरएस वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 9054542112, 4542112।
जी साहब, प्रोग्राम में एक सफर से खुश आमदेद कहना चाहती हूँ। बड़ा खूबसूरत आपने गीत सुना नैयरा नूर का, मुझे खुद बहुत प्यारा लगा। आज मैंने बड़े गौर से सुना कि गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम चले आओ, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूर वफा क्या है। मगर जिंदगी में अब तो सगे माँ बाप के साथ वफा नहीं रही तो पीछे क्या रह गया। दिस इज 21st century और देर आर पीपल हु से इट 22nd century बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द 22nd century। तो वो कहते हैं 21 सदियाँ तो मुकम्मल हो गई, तो 22वीं सदी में से गुजर रहे हैं, तो मेरी अपनी मालूमात में इजाफा हुआ। एनीवेज, एक मुलाकात की जानिब लेकर के बढ़ती हूँ। मैं एक बात कहा करती होती हूँ कि ऑनेस्ट टू गॉड सिंस आई स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग जैस्मिन परमार नेवर हैड एनी सिंगल कंप्लेंट अगेंस्ट हर, अ वंडरफुल पर्सन, शी लुक्स आफ्टर मॉर्गेजेस, आपके लिए काम करती हैं जैस्मिन परमार, मॉर्गेज की दुनिया से राब्ता रखती हैं, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड है, क्लोज द रियल स्टेट को डील करती हैं जैस्मिन परमार। जैस्मिन, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू?
आई एम गुड आफ्टर जी, हाउ आर यू?
Very good to talk to you. Very good. How is the little princess?
The little princess is good too. She's just getting older and naughty.
I know. So are you expecting another one or that's it?
Faji, I'm very done.
Very wonderful family, sisters, brothers, all linked together. Mujhe aapki family ko milke बहुत अच्छा लगा था। जैस्मिन परमार मॉर्गेज में बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करती हैं। जैस्मिन जी, आज एक मुझे क्लाइंट ने किसी और के हवाले से कॉल किया। बाज़ोकात जब हम इंक्वायरी जब तक नहीं डालते तो ज़ाहिर है हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो मुतासिर नहीं होता। तो क्या हिसाब है कि कितनी इंक्वायरीज हों कि इंसान का इंक्वायरी में जो क्रेडिट स्कोर है वो कम होना शुरू कर देता है, तो व्हाट वुड यू एडवाइस पीपल टू लुक आफ्टर एंड हु टू चूज टू गेट द मॉर्गेज और लोन लाइंस ऑफ क्रेडिट?
Yes, sure. So, jaise ki, you know, Asa ji, abhi aapne bola, that's a very good question. So, basically, this is what we tell our clients, ki there is a difference between using the banks, direct lenders, direct banks, jo humare institutional lenders hai, ya credit unions hai, or, you know, you're using a broker. So, there's a two, you know, there's a big difference. So, jab aap broker ko use karte ho, to broker basically aapki saal ko pura structure karke, usi lender pe bhejta hai, jahan se unko pata hai ki aapki jo, कौन सा स्पेसिफिक लेंडर जो है हमारे क्लाइंट की नीड्स के हिसाब से हमारे क्लाइंट के फाइल के हिसाब से ठीक है और कहाँ से हम अप्रूवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यू नो बाय रिव्यूइंग एंड बाय स्ट्रक्चरिंग द एंटायर फाइल फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट वेयर इंडिविजुअली अगर आप ईच लेंडर के पास जाते हैं आप अपनी इंफॉर्मेशन फाइल देते हैं तो ईच लेंडर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप पीडी के पास गए बीएमओ के पास गए आरबीसी के पास गए वो अपनी फाइल को एंटर करके आपका क्रेडिट पुल करके आपको आंसर दे सकते हैं वेयर ब्रोकर विल डू एवरीथिंग फॉर यू एंड ओनली डू वन क्रेडिट चेक एंड सबमिट द डील फॉर द अप्रूवल सो दैट्स अनदर डिफरेंस सेकंडली देयर आर यू नो समटाइम्स वी डू हियर फ्रॉम अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स की यू नो वेदर इट्स अ ब्रोकर और वेदर इट्स अ बैंक डायरेक्टली उन्होंने हमारे मल्टीपल क्रेडिट चेक किए या मल्टीपल सबमिशन की लेंडर्स के पास और ईच सबमिशन के साथ जो है हमारा क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफकोर्स If you are submitting a file to multiple lenders, so definitely jo aapka credit score hai, wo niche aa jata hai. So this is why it's very, you know, important to work with a professional individual, whether it's a broker or whether it's a person directly from the bank. I always say it does not matter whether you work with a broker or you whether work with an individual professional directly from the bank. You just want to have to make sure ki aap jinke saath kaam kar rahe hain, aapko pata hai. वो पर्सन नॉलेजेबल है और वो आपको एग्जैक्टली हर एवरी स्टेप ऑफ द वे आपको इन्फॉर्म रख रहा है आपको प्रॉपर अवेयरनेस दे रहा है कि आपकी फाइल कहाँ जा रही है कैसे हो रही है और कैसे आपकी फाइल जो है प्रॉपरली यू नो इट विल बी डन और आपकी मल्टीपल सबमिशन करके आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट नहीं हो रहा एंड मेन थिंग आई वांट टू टेल माय क्लाइंट्स कि अगर आपकी क्लोजिंग आ रही है चाहे आपने रीसेल लिया या आपने बिल्डर अप्रूवल करवाया Make sure आप अपने broker से टाइमली मैनर से आप पूछ के रखें कि you know we only have few weeks left how far are we for our approval do we have an approval so far or not what's going on with our file you know when the file will be instructed to the lawyer so these are the very important thing as a client we also need to stay aware and also need to stay on top of our file as well ताकि हमें कोई भी last minute जो है hassle या last minute जो है problem ना आए रेस्ट अगर आपको अपनी किसी भी मॉर्गेज के लिए रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो आपने परचेज करी है बिल्डर परचेज है या रीफाइनेंस करवानी है आपको कोई भी क्वेश्चन है और यू वुड लाइक अस टू अरेंज अ फाइनेंसिंग फॉर यू एंड यू हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फाइनेंसिंग एंड यू वांट टू सिट डाउन विद अस एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम स्टेप टू स्टेप डू फील फ्री टू गिव अस अ कॉल एट 647-923-5659 We're open for consultation. We never have a problem to sit with our client, unse baith ke baat karein aur unko unki file ke baare mein pura bataein. We never have a problem, as I said, to give a consultation to our client, whether you would like to use our services or not. So do feel free to reach out to us at 647-923-5659.
बहुत शुक्रिया 923-5659 923-5659 एरिया कोड 647 एंड दैट इज जैस्मीन परमार आप मॉर्गेज लाइन ऑफ क्रेडिट लोन्स के लिए इनसे राब्ता कर सकते हैं नेवर हैड एनी कंप्लेंट बहुत शुक्रिया जैस्मीन जी आपका फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर योर सपोर्ट
बहुत बहुत शुक्रिया सर जी थैंक यू सो मच
गॉड ब्लेस यू जैस्मीन परमार से आपकी मैंने बात कराई मेरी याददाश्तों में से एक बड़ी खूबसूरत याददाश्त निकली मोहम्मद बख्श उनकी है कि बुरे बंदे दी सोबत यार जिमें दुकान लोहारा बुरे बंदे दी सोबत यार जिमें दुकान लोहारा कपड़े पावे कंज कंज बहिए चंगा पैण हजारा मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी पट्टे खावे सबर बेरी दा देख मोहम्मद नेकियां कर दी जावे मैं पापी शर्मिंदा झूठा परिया नाल गुनावा इको आस तहाड़े दर्दी ना कोई होर सहारा कामिल इश्क खुदाया बख्शी गैर वलों मुख मोड़ा इको जाना इको तक्का इको आखां लोड़ा क्या कमाल की बात है ਕਿ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਲੁਹਾਰਾਂ, ਕਿ ਬੁਰੇ ਜੋ ਸੋਹਬਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਹਾਰ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਂ ਅਗਰ ਜਾਏ ਤੋ ਅਗਰ ਉਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋ ਚਲਤਾ ਦੇਖੇ ਜਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖੀਏਗਾ ਲੋਹੇ ਕੀ ਆਪਸ ਮੇਂ ਟਕਰਾਨੇ ਸੇ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਜਬ ਲੋਹੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸੀ ਗਰਮ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਉਪਰ ਵੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਵੀ ਜਲਾ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਯਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਲੁਹਾਰਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜ ਕੰਜ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੋਂ ਕੋ ਲਪੇਟ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੈਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਬੇਰੀ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਖਾਵੇ, ਸਬਰ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਝੂਟਾ ਪਰਿਆ ਨਾਲ ਗੁਨਾਵਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ, ਬਹਿਰਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਝੂਟਾ ਪਰਿਆ ਨਾਲ ਗੁਨਾਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਨਾਵਾਂ, ਮੁਝੇ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਪਨਾਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਮਿਲ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੈਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਾਂ, ਮੁਝੇ ਈਮਾਨ ਕਾਮਿਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਤਮਾਦ ਸਿਰਫ ਆਪਕੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਤਰਫ ਹੋ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾਮੀਨ। ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕਾਂ ਇੱਕੋ ਆਖਾਂ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੁਝੇ ਉਨਕਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨ ਯਾਰਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੀ, ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਅਫਕੋਰਸ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਹੋਏ। ਕੁਛ ਵਸਾ ਨਾ ਸਾ ਆਏਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਖਾਰ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਰਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਮ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਤੋ ਅਗਲਾ ਲਮ੍ਹਾ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਕਭੀ ਕਭੀ ਇਨ ਪੋਇਟਸ ਕੋ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੇ ਕਹੀਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹੀ ਥੀ ਤੋ ਮੁਝੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਥੀ ਤੋ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਲਿਖ ਲੀ, ਇਸਕੋ ਮੈਨੇ ਨੀਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਥਾ। ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਲੁਹਾਰਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜ ਕੰਜ ਬਈਏ ਚੰਗਾ ਪੈਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਮੇਰਾ ਮੇਵਾ ਬੇਰੀ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਖਾਵੇ, ਸਬਰ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਝੇ ਔਰ ਆਪ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਕੇ ਲਈ ਮੁੰਤਖਬ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ।
ਮਿੱਠਾ ਪਲ ਬੇਰੀ ਦੇਵ,
ਉਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਬੇਰੀ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਰਹਾ। ਇਸਕੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਾ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਦੋਸਤੀ ਇਤਰ ਫਰੋਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਗੀ ਤੋ ਆਪ ਜਬ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਹਦੀਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇਂਗੇ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋਇਲੋਂ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਂ ਹੋਂਗੇ ਤੋ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੋ ਜੋ ਧੂਲ ਵੀ ਉੜੇਗੀ ਤੋ ਉਸਸੇ ਵੀ ਆਪਕੇ ਕਪੜੋਂ ਪੇ ਕਾਲਕ ਆਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨੋ ਲੋਹੇ ਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਆ
ਹੈ, ਮਗਰ ਹਦੀਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ।
ਹਦੀਸ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਤਰ ਔਰ ਬੇਚਨੇ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਲੋਹਾਰ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯੇ ਲੋਹਾਰ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਲੋਹਾਰਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜ ਕੰਜ ਬਈਏ ਚੰਗਾ ਪੈਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿ ਵੋ ਆਪ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇਂਗੇ ਤੋ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਪੜੇਗੀ ਤੋ ਵੋ ਛੇਦ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਮਲ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੈਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਾਂ, ਮੁਝੇ ਪੱਕਾ ਇਮਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਮਾਤ ਪੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੂੰ। ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕਾਂ ਇੱਕੋ ਆਖਾਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰਤੋਂ ਕੋ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੀ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਸੈਲਾਬ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਮੁਝੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਕਾਲ ਕੀਆ ਥਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਹਰ ਨੰਬਰ ਸੇਵਡ, ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੈਲਾਬ ਮੇਂ ਡੂਬ ਰਹੇ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ, ਇਟਸ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਿ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਖਾਣੇ ਕੋ। ਮੈਂ ਕਭੀ ਕਭੀ ਸੋਚਤੀ ਹੂੰ, ਆਪ ਦੇਖੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ, ਹਮ ਕਭੀ ਪੈਸੇ ਯਹਾਂ ਰੱਖ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿਸੀ ਕਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਉਸਕੋ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਆਪ ਸੋਚੀਏਗਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਘਰ ਗਿਰ ਗਏ, ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਉਨਕੀ ਪੂੰਜੀ ਥੀ ਵੋ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਦਬ ਗਈ ਹੋਗੀ, توبہ استغفار. قرآن میں ہے نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن زمین اپنا گریویٹیشنل پل کو ختم کر دے گی, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے, اور زمین تمام سونا چاندی اگل دے گی. ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کو کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا وہ کہ وہ جو سونا روپا ہے اس کو وہ وہاں سے اکٹھا کر سکے. مگر جب تک ہم زندہ ہیں شاید اللہ کا امتحان یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی مدد ضرور فرمائے. چند سپانسرز کا پیغام,
ایک کالر بھی ہے ساتھ لے لیتے ہیں. جی
جی کالر لے لیں. جی السلام علیکم. جی
ہاں جی وعلیکم السلام. جی میں بول رہا ہوں پرویندر.
پرویندر جی کیسے ہیں؟
ہاں جی بڑی تھوڑی گل میں سن رہا سی.
جی
مینو ایک گرو گرنتھ صاحب ایک شبد آئے نے میں تمہیں شیئر کرنا چاہنا. وہ سیم گل ہی ہے کہ برے کا بھلا کر, برے کا بھلا کر, من گسا من ہنڈا دہی رو نہ لگ گئی پلے سب کچھ پا. یہ مطلب نکلتا ہے کہ جی کوئی برا بندہ بھی ہے نا وہ بھی تلا کر, گسا اپنے من کے نال گسا نہ ہنڈائی, گسا نہ کری کی ہے تھو گسا کرو گے تھو ڈپریشن آؤ گی تے دیہ نو روگ نہیں لگو گا. دہی رو نہ لگ گئی پلے سب کچھ پا, سارا کچھ تو جو تو چاہنا وہ تین مل جائے گا یہ تم آ کام کرے گا.
پرمندر جی یو آر آلویز سو کائنڈ. آئی ڈونٹ نو میں آپ کو کل کیوں اپنے گھر میں یاد کر رہی تھی. مجھے آپ کا ایک لفظ یاد آ رہا تھا اور میں بے اختیار آپ کو اپنے گھر میں, حالانکہ چھٹی کا دن سی, پتہ نہیں کتوں تھی دماغ چ آ گئے کہ میں نے پرمندر جی میں کوئی چیز کور کر گئی تھی تو پرمندر جی کہنے لگے میں بھی عارفہ جی یوں کہندا سی تسی میرا فون بند کر دیا کر دے سی. آئی لو یو. بہت شکریہ. جیندہ رہے پتری. اللہ میاں آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ فار یور پارٹیسپیشن.
خوش رکھے جی.
جیندے رہو. بہت پیاری بات ہے. ماجی بھائی میں ایک بچے سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی. میں ابھی پرمندر سے جب میری بات ہوئی اس بچے کا لاسٹ نیم مجھے یاد ہے سندو. پرسوں میں اپنے بیٹے کے ساتھ کالر لے لیتی ہوں پھر میں آپ سے ایک واقعہ. اس بچے کو میں نے اس کے پیرنٹس کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو اسٹوڈیو میں لے کے آئیں کہ ماں باپ کی تربیت کیا ہے, کیا ٹریننگ ہے ماں باپ کی. سکھ کمیونٹی کا بچہ ہے, بہت ہی خوبصورت بچہ. اللہ اس بچے کو بہت دے, میرے دل سے دعا ہے. آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں. جی السلام علیکم. جی
السلام علیکم.
جی ہمایوں بھائی
ابھی آپ کا تھوڑی دیر پروگرام لگایا ہے.
جی
وہ جو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مندے نال چنگا کر فریدا.
مندے نال چنگا کر فریدا
کر فریدا. اور ایک چیز اور جو آپ بات کہہ رہے تھے اچھی اور برے کی, وہ کہنے نا چنگیا نال بیٹھیا میرے چولی پھل پے. چنگیا کول بیٹھیا میرے چولی پھل پے, مندیا نال بیٹھیا میرے پہلے بھی رڑ گئے.
کیا بات ہے صاحب, بہت شکریہ بہت شکریہ. اس کو محمد بخش نے ایک اور طریقے سے بھی لکھا ہے, وہ ہے بے فیضاں دی یاری تو فیض کسے نہ پایا, ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب محمد بخش صاحب نے اس کو لکھا تھا. بے قدراں دی یاری اتوں فیض کسے نہ پایا, ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. کہ کیکر کے آپ کو ہوتا ہے کانٹے ہوا کرتے ہوتے ہیں, پنجاب میں ہوتا پتہ نہیں, کراچی میں بھی وہ چھوٹی چھوٹی بہت کیکر ہوتے ہیں. نہیں ہمارے کیکر کے درخت ہوتے ہیں, آپ کی کیکر کی بشیز ہوتی ہیں.
نہیں نہیں ہمارے کیکر کے درخت ہوتے ہیں, چڑھ کے دکھائیں آپ اس پہ.
نہیں نہیں بشیز میں نے دیکھی ہیں کراچی میں, چھوٹے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بشیز.
نو کیکر تو بہت, اب کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور ہر جگہ
درخت چھوٹے ہو گئے,
درخت انہوں نے نکال دیے کاٹ دیے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ کیکر کے درخت تو ہر طرف آپ دیکھیں, کیکر کے درخت ہی کیکر کے درخت ہیں.
صحیح. تو کیکر کے درخت کے کانٹے بہت لمبے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کیکر کے درخت کے اوپر انگور کا خوشہ انگور کی بیل کو چڑھا دیں گے تو انگور کی بیل تو چڑھے گی, وہ پکڑتی جاتی ہے اور چڑھتی چلی جاتی ہے, اور جب ظاہر ہے اس کو پھل لانے کا وقت ہوگا تو جہاں جہاں کیکر ہوگا ہر انگور کے دانے میں کیکر کیا کانٹا لگا ہوا ہوگا. بے قدراں دی یاری تو فیض کسے نہ پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر خوشہ زخمایا. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ لوگ اسٹوڈیو میں کال کیا کریں, جب میں پروگرام کے دوران ہوا کروں نا تو اس دوران آپ پلیز اسٹوڈیو میں کال کر لیا کریں. میری ایک بہت پیاری بہن ہے, نگہت ان کا نام ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. اور میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بعض اوقات بیماروں کے لیے شفا مانگنا ہماری اپنی شفا کا باعث ہوتا ہے. ابھی ایک سمپل اگزامپل, ابھی آپ دیکھیے پرمندر جی جب جانے لگے, میں آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک ریلیجن بھی गलत सिखाता हो, कोई रिलीजन बुरी बात नहीं सिखाता। तो मैंने उनसे कहा कि परमिंदर जी अल्लाह ताला आपका भला करे, उन्होंने आगे से मुझे जवाब कह दिया था सब्बा दी खैर होए। दीज आर जस्ट स्मॉल लिटल थिंग्स। और मेरी इस बहन निगहत को आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। बीमारी सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। कल मेरे बेटे ने मुझे, ये जो टेंशन होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक वीडियो। हम माँ बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम तो हम जानवर और हम एहसान करते हैं। मैं खुद कई दफ़ा एहसान करती हूँ अपने बेटे के ऊपर, तुम्हारी खातर मैंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया। तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाई, तो वीडियो बड़ी खूबसूरत थी कि एक हाथी आपको पता है पाकिस्तान में मैं किस किस गम का आपके साथ इजहार करूँ, किस किस गम का आपके साथ इजहार करूँ। आपको पता है माजरत की खास करूं, पाकिस्तान में हिपोपोटामस हुआ करते होते थे, खत्म हो गए। पाकिस्तान में शेर हुआ करते, चीताज हुआ करते होते थे, अब चीताज नापैद हैं। पाकिस्तान में एलिफेंट्स हुआ करते होते थे, ये पूरा का पूरा एक एरिया था, पंजाब में थे, मगर हमने उनको भी मार दिया, इसलिए कि उनको आइवरी की जरूरत थी, जो हिपोपोटामस है उसकी भी जो आइवरी के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उनको, हिपोपोटामस को भी ख़त्म कर दिया। शेर की खाल हमें बहुत अच्छी लगती है, बड़ी कीमती बिकती है, शेरों को भी हमने ख़त्म कर दिया। हमने हाथी, और आपको याद होगा 2 साल पहले की बात है कि एक कंट्री से बाकायदा अमेरिकन एक एक्ट्रेस थी जो आई थी, एक 3 या 4 हाथी जूज में मौजूद है मगर पाकिस्तान में नहीं है। लाहौर से एक हाथी को निकाला था और ये बड़े डिप्रेशन में था, मैं उसकी डिप्रेशन की वीडियोस देख के हैरान रह गई। अल्टीमेटली इन्होंने शिप किया था,
एक्ट्रेस का नाम है शेर।
हाँ,
उस एक्ट्रेस का नाम है शेर,
शेर। तो उस हाथी को इन्होंने निकाल दिया था। किस किस पे हमने जुल्म नहीं किया, हमने तो वाइल्ड लाइफ ही खत्म कर दी अपने मुल्क से, एक हाथी नहीं, किसके इवज हमने उसको बेचा, उसकी सूंड टस्क जो होती है ना आइवरी, उसको बड़ा कीमती बिकता, उसके इवज हमने बेचा। हिपोपोटामसेस को हमने बेच दिया, शेरों की खाल की खतर हमने उनको बेच दिया। हमारे बादशाहों ने अपने शिकार किए, आजकल ये वो बलूचिस्तान की तरफ कोई तीतर बटेर का शिकार होता है और बड़े हमारे जो कीमती पर, अल्टीमेटली क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बाकी ममालिक में वो पाए जाते हैं, मगर पाकिस्तान से इनका सफाया कर दिया गया। मैं, मुझे उसकी एक ही बात अच्छी लगी थी बैरिस्टर जफर की, उन्होंने कहा हमारा तो मॉरल फाइबर ही वीक है, हम तो जानवरों को नहीं छोड़ते तो हम बंदों को कहां छोड़ेंगे। आई एम सो सॉरी आई गॉट।
नहीं, वैसे भुट्टो साहब का वो सही था, वो अरबों को हमारे पाकिस्तान लेके आया करते थे, स्पेशली सिंध के इलाके में, और वहां पर अगर मुर्गावियां ना भी हो ना तो वो सैकड़ों की तादाद में मुर्गावियां लेके आते थे और उड़ा के उनको फिर ये लोग शिकार किया करते थे उसका।
आई डोंट नो, अभी करामतुल्ला गौरी साहब हैं, इसकी असल हकायक तो वही बताएंगे। आज मैं उनका एक रोजगारे सफीर में मैंने वही चैप्टर खोला हुआ है कि जियाउल हक साहब और भुट्टो साहब के दौर का, जनाब करामतुल्ला गौरी यहाँ मौजूद है। पोएम मेरा दिल करता है कि आप भी सुनाए। मैं अपनी एक मेरी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें, मैं उनको लिख लिया करती होती हूँ। मेरी मेमोरी अब इतनी अच्छी नहीं रही, और मुझे, मैं बड़े, नैयरा नूर की डेथ 72 में हुई, मगर मैं, मुझे लगता है बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें रिमाइंडर
72 में हुई,
अभी 70 साल की उम्र में,
उम्र में।
हाँ, तो मैंने क्या कहा है?
आपने कहा 72 में उसकी डेथ,
मैंने 72 एज कहना मेरा मकसद था ना, दिस इज नॉट 72, शी डाइड डे, या शी डाइड यस्टरडे,
यस,
ठीक है। तो 72 में तो कल 1972 तो नहीं था,
सन नहीं सिन की बात।
हाँ तो हमें रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, बाल सफेद हो गए, याददाश्त जाती रही, तो मेरी याददाश्त थोड़ी कम है, तो मुझे ये एक पोम बड़ी अच्छी लगती है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, एक बात याद रखिएगा, अगर मेरा कॉन्शियस या अगर मेरा जमीर जख्मी हो गया ना, कभी ये रिकवर नहीं हो सकेगा,
कभी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं जिनमें रीजनरेशन होती है, नाखून गिरते हैं, नाखून नए आ जाते हैं, स्किन हमारी पुरानी गिरती है, नई स्किन नीचे आ जाती है, लिवर में रीजनरेशन है, बिल्कुल है, हमारे हार्ट में रीजनरेशन, जीरो रीजनरेशन है। अगर हार्ट सेल्स एक बार हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाए, नेवर रीजनरेट, नेवर
नहीं। बाय द वे अब शुरू हो
वो रीजनरेशन नहीं शुरू हुई, मैं माजरत के साथ हूँ, आप साइंस के बहुत बड़े आला शागिर्द हैं, मगर इंड्यूस्ड फॉर्म में अगर वो इंट्रोड्यूस किया है तो दैट इज बाय द करामत ऑफ डॉक्टर्स, ओके। बट हमारी जो हार्ट के मसल्स हैं, हमारी नर्व्स में रीजनरेशन है। इवन इफ माय मेमोरी इज गोइंग डाउन, और अगर मैं क्विज प्रोग्राम्स को क्विज या प्रॉब्लम सॉल्यूशन में अपने आप को रीडिंग में ज्यादा करूं तो दैट कैन इम्प्रूव माय रीजनरेशन इन माय नर्व्स, बट हार्ट में नहीं है। तो मैं ये कहती हूं कि अगर पैसे की
बुरा दिल टूटा है ना, अगर बाज जो दिल टूटते हैं वो तो रिजनरेट हो जाते हैं।
ये सब ड्रामा है माजी कमाल, हार्ट इज जस्ट एन ऑर्गन। हार्ट इज
गौरी का बात
नहीं, हार्ट इज जस्ट एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड।
असल खेल माजी साहब यहाँ
दिमाग का है। अक्सर लोग
दिस इज द पावर हाउस।
अक्सर लोग कहते हैं हाय अल्लाह उसको देख के मेरा दिल धड़का, गाल लाल हो गए, कान लाल हो गए। इसलिए होते हैं कि आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम, आपके हार्मोन्स, दिल यहाँ है, गुर्दे यहाँ है, गुर्दों के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एसिटिलीन पैदा करता है और वो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हार्मोन गोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड और वो जब आता है तो दिल धड़कन, या किसी को देख के, तो कारोबार सारा का सारा खून का है।
मैं शायरों की ढूंढ रहा था मगर मेरे सामने एक बहुत बड़े शायर बैठे हुए, तो अब ऐसा करें कि आप दिल के करामतुल्लाह गौरी साहब बड़े गौर से सुनिए आप
जी,
कि दिल के जितने यहाँ पर भी शायरों ने दिल का जिक्र किया है ना, अगर आप उसको सारों को निकाल के अब गुर्दों का जिक्र कर दें वहां पर तो कैसा रहेगा?
गुर्दे का नहीं, गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड जी। वरी भाई ये ना ये पोएट्री में पूरे ना साइंस में पूरे। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम।
बहुत
दिल की बात हो रही थी
जी।
दिल ऐसी चीज को बदनाम कर डाला जमाने ने,
दिल ऐसी चीज को बदनाम,
बहुत मजबूर हो के हमने आईने वफा बदला।
हाय हाय हाय, बहुत मजबूर होकर हमने आईने वफा, ये आईन वो है जो हुकूमत पाकिस्तान का आईन है। जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। करामतुल्लाह गौरी 30 साल तक मुल्कों पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। सर आपकी किताब रोजगार सफीर को मैं देख रही थी, शुरू का हिस्सा तो आपकी हिजरत हिंदुस्तान से, आपके असातिज़ा का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने किया, और मैं अपनी भी जिंदगी को अगर याद करूँ कि वो उस्ताद जिसकी इज्जत की थी उसके सबक में हम माहिर भी बड़े थे, मगर वो उस्ताद जिनकी हम इज्जत नहीं करते थे हम भी सिफर निकले उसमें। आपने एज 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 ग्रेड लिए हैं और उसके बाद यूएसए, एक आपको सफीर से मुलाकात होती है अमेरिकन, तो ये क्या था? पाकिस्तान की जितनी क्रीम है या जितने एक्सलेंट स्टूडेंट्स हैं, क्या दे लुक एट द डेटा एंड दे पिक देम अप टू ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम, व्हाट इट इज?
बात अमरीकनों की हो रही है। नहीं, उससे पहले एक बात जो आप अभी बात कर रही थी ना
जी,
हमें स्कूल में सबसे पहला जो सबक पढ़ाया गया था वो ये था, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट,
व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट
समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन मॉरल्स आर लॉस्ट
एवरीथिंग इज। अच्छा, हमने इसको पढ़ा था, व्हेन वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, व्हेन हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, एंड व्हेन करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन।
एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में भी आजकल जो मसला है ना वो ये कि किसी सतह पर किसी शोबे में जिंदगी के किसी कारखाने में कैरेक्टर नजर नहीं आता।
सैड है सर, सैड है।
नीलामी हो रही है अखलाक की, मसनदे इंसाफ पर बैठने वाले लोग जब अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले। कहा जाता है कि इंसाफ की आंखों पर पट्टी बंधी होती है लेकिन इंसाफ अंधा नहीं होता। इंसाफ उस वक्त अंधा होता है जब मुनसिफ कोरबीन मादरजाद अंधे हो जाए। और पाकिस्तान में फी जमाना यही हो रहा है। और इस बजाय इसके कि अदल की हुकूमत कायम की जाए, मौला मेरे मौला अली का कौल मुझे याद आता है कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती।
मुस्लिम लीग नवाज के एक लीडर ने एक इंटरव्यू दिया है जिसको मुझे सुनने का मौका भी मिला। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया था तो चंद लोग सैकड़ों की तादाद में निकले थे इमरान खान साहब के जब अरेस्ट के लिए, कि लोग अपने शीरख्वार बच्चों को लेके भी बनी गए एंड दे डिडंट मेक इट पॉसिबल। मगर सर, अगर एक बंदे ने कत्ल भी किया और एक बंदे ने टेररिस्ट भी किया तो कत्ल में बेल भी हो सकती है, उम्र कैद में भी चेंज हो सकता है, मगर अगर किसी ने टेररिस्ट की उस पर प्रूव हो जाए तो उसकी सजाए मौत है। तो ये जो अभी मामला पाकिस्तान में हुआ है कि उन पर टेररिस्ट के चार्जेस लगे हैं, क्या इनको प्रूव किया जाएगा या व्हाट विल हैपन नाउ?
नहीं, पूरी कोशिश तो यही होगी कि इनको साबित किया जाए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं
जी,
दहशतगर्दी की तारीफ क्या है? मेरे नजदीक दहशतगर्दी के माने बहुत वसी हैं। 6 महीने पहले मैंने या आपने या माजिद जमाल साहब ने कभी ये सोचा था कि पाकिस्तान का वो नक्शा होगा जो आज हमें नजर आ रहा है?
नेवर।
एक हुकूमत चल रही थी, मुल्क में सनअती पैदावार भी बढ़ रही थी, मुल्क की बरामदात में भी इजाफा हो रहा था, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी इतने थे कि आप इत्मीनान से गुजारा कर सकते थे, मुल्क में शख्सी आज़ादियाँ भी थीं, बोलने का हक भी हासिल था, तहरीर का हक भी हासिल था। अचानक क्या हुआ? तो इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है कि आप एक 22 करोड़ आवाम के मुल्क को, एक कौम को मसाइल में मुब्तला कर दें, लोगों की जिंदगी अजीरन हो जाए, लोगों का जीना महाल हो जाए, इससे बढ़कर दहशतगर्दी कोई हो सकती है?
नहीं हो सकती।
नहीं हो सकती ना। और अब जो ताकत का बेमहाबा इस्तेमाल हो रहा है, जो शहबाज गिल के साथ सलूक हो रहा है,
अभी तो वो फारूकी साहब बोल के जो हैं उनके साथ भी बहुत, उन्होंने तो बल्कि
उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सारी कोशिश ये है कि इन अफराद को पकड़ के और इन पर मजालिम ढा के इनको वो बनाया जाए जिसके लिए अंग्रेजी में कहा जाता है टू मेक ए हॉरेबल एग्जाम्पल,
निशाना इबरत।
मैं मेरी आदत है, मैं 3-4 किलोमीटर रोज पैदल चलता हूँ, तो जब निकलता हूँ तो कुछ न कुछ आमद हो जाती है। तो अभी मैं आने से पहले जो तेजगामी कर रहा था, मैं उसको चहलकदमी नहीं तेजगामी कहता हूँ। तो एक 4 मिसरे हैं कि नशा ताकत का बुरा होता है, नशा ताकत का बुरा होता है, उसका अंजाम भी क्या होता है, जिल्लतो खारियो रुसवाई तमाम, क्या भला इसके सिवा होता है। लेकिन जुल्म करने वाले ये भूल जाते हैं कि जालिम की रस्सी वो दराज जरूर करता है, वो ऊपर वाला, लेकिन फिर अचानक खींच लेता है। और जब खींचता है तो हर फिरौन गर्क दरिया हो जाता है।
वेरी सैड सर, वेरी सैड।
ये लोग आग से खेल रहे हैं। रात को मैं कॉलम लिख रहा था, उसका उन्वान मैंने यही रखा, आग से मत खेलो, जल जाओगे।
सही, बहुत खूबसूरत इसको फैज अहमद फैज ने भी, निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, आप अगर कैरी ऑन
कर नजर झुका के चले, जिस्म जा चुरा के चले,
है अहले दिल के लिए अब ये नज्म बस तो कुशात के संगो कश्त मुकैद है और सगा
बहुत आज के पाकिस्तान में सग आजाद हैं।
बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुंसफी चाहे, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं तेरे फराक में, ये सुबह शाम गुजरते हैं, निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां।
आपने कुरान में जिक्र है फिरौन के साथ हामान का भी है।
जी सर,
तो पाकिस्तान में भी एक हामान है, फिरौन जो है वो तो सबको मालूम है, एक हामान है जो अभी उमरा करने के लिए गया था, ये पाकिस्तान
वजीर दाखला,
ये पाकिस्तान के जो सियासी बौने हैं, सियासी गुमाश्ते जिनको मैं कहता हूँ, इनकी सोच भी बड़ी अजीब और गरीब है। ये समझते हैं कि उमरा करके आ जाओ तो फिर बिल्कुल ऐसे वो हो जाते हो जैसे माँ के बदन से बच्चा पैदा होता है, आते ही उस शख्स ने फिर वही सियाह करतूत शुरू कर दिए जिनके लिए वो बदनाम है, रुसवाए जमाना है, वो धमकियां दे रहा है कि जजों को, वो धमकियां दे रहा है मुनसिफों को कि तुम्हें इस मुल्क में रहना है, तुम्हारे बच्चे बाल बच्चे भी यही हैं, ये इमरान की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि ये इमरान
तो चला जाएगा, इसके बच्चे नहीं,
यहाँ नहीं रहते, ये भी चला जाएगा।
वो सर ऑडियो कॉल आपने सुनी है जिसमें उसने, और ये जनाब ताहिरुल कादरी साहब के लाहौर का जो वाकया था इसमें भी जिन लोगों को मारा गया था उसमें राणा निसार साहब का नाम था, और अभी भी जो वीडियो कॉल लीक हुई है उसमें भी वो कहते हैं कि इनके जलसे में जो इनके पास कैमरे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करो और चार छः बंदे मार दो। डिड यू हैव अ चांस टू सी दैट?
एक ऐसे किरदार के शख्स को जब आप मुल्क का वजीर दाखला बनाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमान का किरदार तो सबको मालूम है, लेकिन वो जो इसकी सरपरस्ती कर रहा है उसके मुताल्लिक क्या?
सर नवंबर में इंशाल्लाह चेंज आ जाएगा,
लेकिन उस वक्त तक
इट विल बी टू लेट,
वो पाकिस्तान का नुकसान कर चुका होगा। मैं यही कहता हूं कि मीर जाफर ने एक बंगाल को नुकसान पहुंचाया था, इस मीर जाफर जमाना ने जो 22 करोड़ अवाम के मुल्क पर कहर ढाया है, उसके 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 जो नताइज मुरतब होंगे उनका तसव्वुर करके मुझे तो खौफ आता है। कल मुझसे कोई सवाल पूछ रहा था, लोग बहुत सवाल करते हैं, बहुत फोन करते हैं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। मैंने कहा देखो ये जो कुछ हो रहा है एक गैर मुल्की ताकत के इशारे पर हो रहा है, हमारी मुल्क की तारीख वो इकबाल ने जो कहा था कि गरीबो सादा रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, तो हमारे मुल्क की तारीख भी बहुत ही सादा है और रंगीन भी है। रंगीन किससे है? बेगुनाहों के कत्ल के खून के धब्बों से रंगीन है। तो पाकिस्तान की तारीख में आज से नहीं, पिछले 74 बरस से ये होता आया है कि मुल्क का एक इदारा जो चाहता है वो पाकिस्तान की पॉलिसी बन जाता है। कायदे आज़म अलर रहमा ने अपने पहले खिताब में जो उन्होंने स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौज के अफसरान से मुखातिब होते हुए कहा था, उन्होंने बहुत वजाहत से बहुत सराहत से फरमाया था कि तुम्हारा काम सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत है, तुम्हारा काम पॉलिसी बनाना नहीं है, पॉलिसी बनाना सिविल ब्यूरोक्रेसी की और सियासतदानों की जिम्मेदारी है, तुम्हारा फर्ज उस पॉलिसी को अमल देना है, उस पर अमल करना है। लेकिन हुआ क्या कि कायदे आजम के फरमान को भी उसी तरह भुला दिया जिस तरह से मुसलमानों ने वो जो
खुदा के पैगाम को बदल दिया,
कुरान में इबरत का वो दास्तान पेश की है कि हमने किस तरह से फिरौन को दरिया में डुबोया और उसको आने वाले जमानों के लिए इबरत का निशान बना दिया। मुसलमान भूल गए। हुआ क्या, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि लोग हाल को माजी के आईने में देखें, तारीख के पस मंजर में देखें। बात पीछे जाती है 1950, कायदे मिल्लत लियाकत अली खान से अमेरिका ने हवाई अड्डे मांगे थे, कायदे मिल्लत ने इनकार कर दिया, वो शहीद हो गए या शहीद कर दिए गए। उसके बाद जब ताकत उनके हाथ में आई, जिन्होंने आज तक उस ताकत को अपनी गिरफ्त से छोड़ा ही नहीं है, तो उन्होंने अमेरिका को बेस दे दी पेशावर के बाहर बड़ा बेर, जहां से 2 मई 1960 को अमेरिका का एक U-2 स्पाई प्लेन उड़ा था जिसे सोवियत यूनियन ने अपने इलाके में मार गिराया था। बहुत दिलचस्प वाकया है। आजकल वो मेरा फॉरेन सर्विस का साथी जफर हिलाली पाकिस्तान के टेलीविजन पर बहुत बोलता है। जफर हिलाली के वालिद बुजुर्गवार आगा हिलाली हमारे सफीर थे मॉस्को में। माजे साहब, जिस दिन जहाज रूसियों ने गिराया है उसी शाम को क्रेमलिन में एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया हो रहा था और उस वक्त के सोवियत यूनियन के रहनुमा क्रुश्चॉफ में ने हमारे सफीर आगा हिलाली को भरे मजमे में सबके दरमियान बहुत ऊंची आवाज में कहा कि एम्बेसडर इन्फॉर्म योर गवर्नमेंट दैट वी हैव ड्रॉन ए रेड सर्कल अराउंड द सिटी ऑफ पेशावर।
Wow.
If another American spy plane takes off from your land, Peshawar will cease to exist on the map of the world.
So, ye Agha Hilali sahab us waqt Russia mein the.
Rus mein hamare safir the. Uske baad kya hua? Sadr Ziaul Haq ne सदर जियाउल हक ने अमेरिका के लिए जब अफगानिस्तान में रूसी मुदाखलत हुई और अफगान जिहाद शुरू हुआ तो उन्होंने अमेरिका के लिए पूरे मुल्क को खोल दिया। मुजाहिदीन की तरबियत पाकिस्तान में होती थी, मुजाहिदीन के कैंप पाकिस्तान में बने हुए थे, सब कुछ था। लेकिन जियाउल हक को उसका सिला क्या मिला?
मौत।
दुनिया को मालूम है क्या अंजाम हुआ। मुशर्रफ का दौर आया, मुशर्रफ ने क्या किया? एक फोन कॉल पर जनरल कॉलिंस की एक फोन कॉल पर कहा कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं जो आप चाहते हैं। तो जिस कौम का ये हाल हो, जिस कौम की अस्करी क्यादत का ये मयार हो कि वो एक फोन कॉल पर अपने मुल्क को गैरों के हवाले कर दे, अपने मुल्क की सरजमीन गैरों को सौंप दे, तो आज जो कुछ हो रहा है मुझे उस पर हैरत नहीं है।
आप सही कहते हैं, मगर करामत भाई, मेरा सर आपका तजुर्बा बहुत, मैं तो सीखने के लिए आपसे यहाँ मौजूद हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, मुझे सबसे बड़ा गम यह है कि जो पोलराइजेशन हो गई है ना, दैट इज वेरी बैड।
बैड भी है लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अच्छा भी है पाकिस्तान के हक में।
लोगों में
शऊर बेदार हुआ है पहली बार लोगों को, और लोगों में भी उस तबके को जो پڑھا لکھا متوسط طبقہ ہے جس کے متعلق جو بدنام تھا اس کے لیے کہ وہ ملک کی سیاست کو اپنے لیے گالی سمجھتا ہے، وہ طبقہ بیدار ہو گیا ہے، اس میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ اگر اسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسے اگر اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، اسے اگر موجودہ پاکستان جو قائد کا پاکستان نہیں ہے بلکہ وہ آدھا پاکستان ہے جو پاکستانیوں کے حصے میں آیا ہے، اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ملک کی باغ ڈور ان ہاتھوں میں ہونی چاہیے جن کو وطن عزیز سے محبت ہے، جو جن میں حریت کا جذبہ ہے، جن میں حب الوطنی ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہے۔ ہمیں ہماری آزادی کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے۔
آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ابھی ابھی مجھے میسج ملا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے انہوں نے پہلے اے آر وائی کو بند کیا، پول کو بند کیا، جمیل فاروقی کو بھی اریسٹ کر لیا، انہوں نے تو خود کہا ہے کہ میرے ساتھ بھی تشدد کیا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب کو بند کر دیا، ابھی خبر ملی ہے کہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو بلاک کر دیا گیا،
اور عمران کی گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
اچھا، پورے ملک میں انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا ہے، اور اب کیا ہوگا اگر عمران خان کو انہوں نے بلاک کر دیا ہے، اور اگر یہ اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور ان پہ ٹیررسٹ کی دفعہ، دہشت گردی کی دفعہ لگ گئی ہے، تو دے ول کل ہم۔
منصوبہ یہی ہے۔
ڈو یو تھنک بات کر رہا تھا پورا ہو جائے گا؟ یہ
نہیں، پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے مالک الملک تو وہ ہے۔
ہاں، زندگی موت تو خدا،
سب سے بڑا کارساز تو وہ ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ مکر کرتے رہتے ہیں، یہ منصوبے بناتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ہو خیر الماکرین،
اللہ ہو خیر،
سب سے بڑا منصوبہ ساز تو وہ ہے، تو وہ جب چاہے ان شیطانوں کی کشتی کو غرق کر دے گا، جس طرح سے اس نے فرعون کو نیل میں غرق کیا تھا۔
کہتے ہیں کہ فائبر آپٹک کیبل کٹنے کے باعث متعدد شہروں میں انٹرنیٹ بند ہو گیا، تو آپ نے کہا یہ اندھیرا ہے۔
بالکل، تیاریاں ہو رہی ہیں،
مکمل تیاریاں ہو رہی ہیں۔
اصل میں امریکن منصوبہ یہ ہے
کہ آرمی آ جائے گی، میرا خیال ہے کہ نومبر
میں بھی وہی کیا جائے جو
سری لنکا
سے پہلے نہیں، مصر میں،
مصر میں، ایگزیکٹلی مصر میں بھی۔
آپ کو یاد ہوگا کہ عرب اسپرنگ جب شروع ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں مورسی پہلا شخص تھا، مصر کا پہلا صدر تھا جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا۔ لیکن کیا ہوا، ایک سال میں مورسی کا تختہ الٹ دیا گیا اور ملک پر ایک اور عسکری ڈکٹیٹر بٹھا دیا گیا، جنرل سیسی، عبد الفتح سیسی، اور وہ بالکل اس ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ یہی نقشہ وہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔
وہاں پہ بھی انٹرنیٹ کو جیم کیا گیا تھا، ایجپٹ میں بھی انٹرنیٹ کو جیم کیا گیا تھا، لوگ اکٹھے ہو کے باہر نکلے تھے۔ یہ تو کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے،
ریسنٹلی 2012 کی بات ہے۔
جی جی جی، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بڑی دنیا اکٹھی ہوئی تھی۔ تو اٹس گوئنگ ٹو بی سیم،
بالکل وہی نقشہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام کو وہ آزادی اب تک حاصل رہی تھی جس آزادی کو یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحریر اور تقریر کی آزادی۔ میں پاکستان ہر سال 2 سال کے بعد جاتا ہوں، تو میں ہر بار، مجھے لیکچر دینے کے لیے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز بلایا جاتا ہے، کیونکہ میں وہاں کام کر چکا ہوں، ان کے لیے میں لکھتا رہا ہوں، تو میں ہر بار اپنے سامعین کو یاد دلایا کرتا تھا کہ دیکھو، ہم میں بہت سی کمزوریاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ایک جو نعمت ہمیں حاصل ہے وہ دنیا کے کسی اور مسلمان ملک کو حاصل نہیں ہے، اور وہ ہے تحریر اور تقریر کی آزادی۔ اسی لیے تو ان کو ڈر کیا ہے، یہ جو ظالم اب پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں، ان کو سب سے بڑا خوف اسی تحریر اور تقریر کی آزادی سے.
مگر سر یہ بھی کیا یہ سعد رفیق نے آج تک کبھی یہ بات نہیں کی تھی جو شہباز گل کے اوپر ظلم ہوا ہے؟ فرسٹ ٹائم دو لوگ بولے ہیں اس کے گیں, جس میں ایک سعد رفیق نے کہا ہے کہ آج ان کے ساتھ ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا, کل ہمارے ساتھ تھا آج ان کے ساتھ ہے کل پھر ہمارے ساتھ ہوگا. اس نے بڑا اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا. اور ایک نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے, پیپلز پارٹی کے, تو مطلب کس سمت میں ہم جا رہے ہیں؟ کہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی لمبا عرصہ تو نہیں رہیں گے, نومبر میں جب چینج آئے گا تو وہ تو اپنی پاپولیرٹی ویسے ہی لوز کر گئے ہیں.
ان کو تو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے.
ہاں دیر دیر کون,
اس لیے کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا.
اچھا کیا وجہ ہے کہ مریم نواز بالکل نہیں بول رہی؟ ان کی تو بل
وہ تو
کل آج کل خاموش.
وہ تو دونوں بھائیوں میں اختلاف ہے نا, دونوں بھائیوں میں اختلاف ہے, شہباز اور نواز میں اختلاف ہے. شہباز یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمی کی قیادت کریں, نواز یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی مسلم لیگ کی قیادت کرے. تو یہ تو آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے.
ویری سیڈ سر, ویری سیڈ, ویری سیڈ. بہرحال یہ تو پاکستان کا مستقبل جو اب آپ کو انشاءاللہ نومبر میں دیر ول بی گڈ نیوز کمنگ ان. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آپ آ جاؤ کھل کے سامنے آ کے کھیل لو تو مطلب کم سے کم جھوٹوں کو تو ہمارے سر پہ نہ بٹھاؤ.
لیکن عارفہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ باجوا کے بعد جو آئے گا وہ باجوا جیسا نہیں ہوگا؟
نہیں, باجوا صاحب خود ہی رہیں گے. اگر مارشل لا آ جاتا ہے تو باجوا صاحب خود رہیں گے.
وہ تو امریکن منصوبہ تو یہی ہے,
باجوا صاحب ہی رہیں گے.
اسی لیے ان کو اب بلایا جا رہا ہے.
Yeah, he is coming in first week of September.
وہ جو منصوبے پر فنیشنگ ٹچز اپلائی کرنے کے لیے ان کو یہاں بلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تک یہ اب کھچڑی پک گئی ہے, اب تمہیں صرف اس میں بگھار دینا ہے. بگھار دینے کے لیے پھر جو آخری جو بھی ان کو نصیحت کی جائے گی وہ نصیحت.
اچھا اس پورے کے پورے دورانیے میں جب یہ ساری پی ڈی ایم بنی تھی تو زرداری صاحب کو کیا ہوا کہ وہ آل آف سڈن دبئی چلے گئے؟ انہوں نے کہا تھا میرے گرینڈ سن کا, گرینڈ ڈاٹر کا, جو ان کی بیٹی بختاور کا بچے کی سالگرہ کے لیے وہ گئے ہیں, بٹ ہی نیور کیم بیک. کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب سائڈ پہ کیوں ہوئے ہوئے؟
زرداری کو کی پہلی محبت تو پیسہ ہے, تو وہ دبئی گیا تھا اپنا پیسہ لے کے بھاگا تھا. وہ جو سوٹ کیسز بھر کے لے جائے گئے تھے ایک چارٹر جہاز میں, وہ سارا زرداری کا پیسہ تھا. زرداری کی دوسری محبت یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے پاکستان کا. یہ جو بلاول کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے وہ صرف اس لیے, اس نیت سے بنایا گیا ہے کہ بلاول
to give
کو
انٹرنیشنل اکنالجمنٹ,
دنیا سے روشناس کروا دیا جائے, بلاول کا تعارف ہو جائے دنیا کے ان تمام ممالک.
کچھ عرصہ پہلے تک ہم سن رہے تھے کہ زرداری صاحب بہت بیمار ہیں, ہاسپٹلائزڈ ہیں, تو واز دیٹ فیک؟ انہوں نے علاج پاکستان کراچی میں ہی کروا رہے تھے.
ہاں وہ تو علاج کروا رہے تھے, پتہ نہیں بیماری کیا تھی اور علاج کیا ہو رہا تھا. بیمار تو نواز شریف بھی ہیں اور تین سال سے انگلستان میں بیٹھے ہوئے, لیکن علاج تو ہوتا آج تک نظر نہیں آیا.
سر آپ امبیسڈر رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے امبیسڈرز اپنے جونیئر سے بھی رابطے ہوں گے, کیا کوئی اس گورنمنٹ سے یہ سوال کرتا ہے یا اس ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے یہ سوال کرتا ہے کہ وہ لوگ جو کرپٹ تھے اور وہ بھائی جس نے اپنے بھائی کی ضمانت دی تھی اسٹام پیپر کے اوپر, وہ بھائی واپس بھی نہیں آیا اور وہ اس بیل میں ناکام ہوا, وہ کیسے پرائم منسٹر بن گیا؟ نمبر ایک. اور نمبر دو, جو الفاظ عمران خان صاحب نے استعمال کیے, یہ الفاظ جناب فضل الرحمان صاحب نے بہت بار استعمال کیے ان بلیک اینڈ وائٹ, بے شمار
مریم نواز
صاحبہ نے استعمال کیے,
آصف نے بھی استعمال کیے, زرداری نے بھی,
زرداری صاحب نے, نواز شریف صاحب نے بہت بار استعمال کیے. تو کوئی آپ کے جو جونیئرز ہیں کوئی سوال کرتا ہے اداروں سے؟
نہیں, جو जो इन सर्विस हैं वो उनकी तो जरूरत नहीं होती, उनको तो अपनी नौकरी अजीज होती है।
तो हम तमाम कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार रहते हैं।
तो ये तो हमारी ब्यूरोक्रेसी की लानत है। हालांकि मैं फिर कौम को याद दिलाना चाहता हूँ, अपने सामईन को, अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहता हूँ कि कायद आज़म अल्लाह रहमा ने अपने खिताब, पहले खिताब में जो सिविल सर्वेंट से किया था, उन्होंने कहा था, बहुत वजाहत से कहा था कि अगर तुम्हें कोई गैर कानूनी या गैर आइनी हुक्म दिया जाए तो तुम पर लाजिम नहीं है कि उसकी पाबंदी करो।
बहुत सारी मिसालें गुजरी। राशिद मिन्हास ने अपनी जान दे दी थी, अपने ऑफिसर का कहा नहीं माना था। जहाँ पे आप, ये तो कहीं भी जब आप ओथ लेते हैं तो इट्स अ कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशन, यानी अल्लाह ताला कहता है माँ बाप की, कोई माँ बाप के आगे उफ ना करो, मगर अगर वो भी आपको अल्लाह के अगेंस्ट पे काम दे तो यू आर सपोज टू यू नो डिसबे दैम।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो खिलाफ शरीयत कोई हुक्म दे रहे हैं माँ बाप, तो औलाद पर
लाजिम
नहीं है कि वो उस हुक्म को माने।
जी जी।
राशिद मिन्हास की मिसाल आपने दी, बहुत अच्छी मिसाल है कि राशिद मिन्हास ने अपने सीनियर अफसर का हुक्म नहीं माना, अपनी जान दे दी।
रहमान बंगाली थे
और उस जान का सिला ये मिला कि उनको निशान हैदर दिया गया। लेकिन यहाँ तो अभी हालिया जो मिसाल हमने देखी वो ये कि एक सिपह सालार ने अपने वजीर आजम का हुक्म नहीं माना। वजीर आजम ने तो टीवी पर बैठ के ये कहा कि
हम रशिया के साथ जाएंगे,
हम रूस के साथ जाएंगे, हम अमरीका को बेसिस नहीं देंगे। उसके तीन या चार रोज के बाद इस्लामाबाद में जो स्ट्रेटजिक डायलॉग की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बाजवा साहब ने खड़े होके बड़े ज़ोरों से कहा कि हम रूसी जा रहीत की मजम्मत करते हैं और अमेरिका के साथ तो हमारे ताल्लुकात बहुत दरीना हैं। बहुत तो ये अगर वजीर आजम के हुक्म अदूली नहीं है तो और क्या है।
मैं सर आपसे सीखना चाहती हूँ, और जो मेरा सवाल है, मेरे लिए तमाम पार्टीज मोतबिर हैं, पाकिस्तान मोतबिर है, आर्मी मोतबिर है। अभी पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट और एक आर्मी, दो इदारे हैं जो मदद कर रहे हैं उन गरीबों की जिनके घर पैसा सब कुछ लुट गया। मैं यहाँ पे जो सवाल रखना चाहती हूँ कि अगर इमरान खान की ज़ाहिर पॉपुलैरिटी बहुत है, इमरान खान को भी चाहिए कि आर्मी से अपने आप को अलग ना करें, कुछ सुनो कुछ सुनाओ, एक टेबल पे ये जो इंतशार है ना, ये मुल्क के काम नहीं आएगा। एक जगह बैठ के प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए। देर आर फ्यू रिजर्वेशंस, जो आर्मी की रिजर्वेशंस हो उनको भी पूरा किया जाना चाहिए और आर्मी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मगर जो दिफा का सेक्टर है अगर वो आर्मी नहीं छोड़ना चाहती तो लेट देम टेक केयर ऑफ इट।
लेकिन दिफा की तख्सीस होनी चाहिए।
अच्छा,
दिफा का मफहूम क्या है इसकी वजाहत होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में ये तरमीम होनी चाहिए जिसमें पूरी सफाई से ये लिख दिया जाए, ये तहरीर कर दिया जाए कि फौज को रियासत के सियासी मामलात में मदाखलत का कोई हक हासिल नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो इंतशार है, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी जड़ों में फौज की सियासी अमल में मदाखलत का अंसर है। फौज ने हर हुकूमत के मामलात में मदाखलत की है। फौज ने अपने आप को खुद साख्ता रेफरी बनाया है, बकौल इमरान के थर्ड अम्पायर, जबकि आईन फौज को इस तरह का कोई हक नहीं देता।
मगर अवाम में से बहुत से लोग ये भी तो चाहते थे ना कि जब इतनी जुल्म कर रहे हैं राणा सनाउल्ला, कि अब फौज को जाइए टेक ओवर कर ले, ये भी तो चाहते हैं ना कई लोग।
राणा सनाउल्ला किसके ईमा पे ये जुल्म कर रहा है?
सही,
राणा सनाउल्ला को ये इख्तियार किसने दिया कि वो इस तरह की बातें कर सके जिस तरह के बातें पंजाबी फिल्मों का ही विलन किया करता था।
सैड।
तो वो जो कहावत है कि चोर को न पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। चोर की माँ का तो नाम लोग लेते हुए घबराते हैं। खौफ की हालत यह है, मैं मुझे क्या, मुझे रोना भी आता है हंसी भी आती है कि पूरी कौम को आसाबी तौर पर इस तरह से खौफ में मुब्तला कर दिया गया है कि लोग बाजवा का नाम लेते हुए डरते हैं।
बहुत खूब, वेरी सैड जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। थोड़ा सा इस डिप्रेशन से निकाल लेना, आप कोई अच्छी सी बात भी कर दें, कोई अच्छी सी पोएम सुनाएं। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, न कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म को बचा के चले।
मैं आपको एक वाकया सुना बताता हूँ।
प्लीज।
परवेज मुशर्रफ ने जब इख्तदार संभाला
जी,
तो इख्तदार संभालने के 10वें दिन वो अनकरा तशरीफ ले आए थे।
अच्छा, आप वहां थे?
मैं वहां सफीर था। तो उन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सहाफियों से, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मेरे लिए तो मुस्तफा